This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders.
Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host Anushka Sodhi and joining me today are my News Laundry colleagues Prateek Goyal and Basant Kumar, who have, along with the rest of the News Laundry team, reported extensively on the electoral bonds data which was made public by the Election Commission and the SBI after an order of the Supreme Court. But before we start, we have something special to share with our viewers. News Laundry has won two awards at the prestigious Ramnath Goenka Excellency in Journalism. The first award went to Basant Kumar and Ayush Tiwari in the Environment, Science and Technology category for the Plunder of the Aravali series. And the second award went to Ridesh Joshi for a video report on arsenic in water triggering diseases in several villages, which was supported by Thakur Foundation and edited by News Laundry's Satish Kumar. It won the award in the Hindi broadcast category. So congratulations, Basant.
Shukriya.
Tell us what it felt like yesterday. I know this is... it's a very prestigious award. You have been hoping to get one for a while. Tell us about the experience.
अच्छा लग रहा है. काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. काफी मजा आया. Family के लोग आए हुए हैं. दोस्त यार सब खुश हैं. मैं भी खुश हूँ.
काफी और भी मिलेंगे. और so getting back to our stories for the week, News Laundry, the News Minute, and Scroll, along with independent journalists, had collaborated for Project Electoral Bond. We've done a series of extensive reports examining the data. So we have the stories up on all of our websites, and you can check them out if you haven't already. Let's start by I want to start with Prateek's story about how 41 companies donated to BJP and face central action. 18 of them bought electoral bonds of rupees more than 2,000 crores. This is also, I think, a follow-up of an extensive investigation that Prateek from News Laundry and News Minute collaborated on more than a month ago. So, Prateek, can you tell us about these companies and the timing of the agency raids and their donation?
So, like 41 companies, so, investigation kiya tha. फोर पार्ट सीरीज था हम लोग का, तो बसंत भी था उसमें और हमारे देश से आमान ने भी काफी इसमें मदद की थी. और तो हम लोगों ने जो स्टोरी किया था तो उसमें जो 30 कंपनी जो पहले निकाली थी, उसके बाद हमने 14 और निकाली थी कंपनीज 15, तो 15 में से 4 शेल थी, तो उन शेल को हटा दिया तो 41 कंपनीज थी. तो जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा रिलीज हुआ तो उसमें पहले जब हम देख रहे थे तो 41 में से 18 कंपनी उसमें मिल गई थी हमको. और वो ये कंपनी ऐसी थी जिसमें रेड और डोनेशन का पैटर्न था, कि मतलब रेड्स होती हैं देन आप डोनेशन देते हो, या आप पहले से डोनर हो तो अगर आप स्किप करते हो डोनेशन तो रेड होती है, फिर आप यू स्टार्ट डोनेटिंग अगेन, या फिर अगर आप आपका अमाउंट अगर कम है तो आप रेड होती है देन यू डोनेट अ लार्जर अमाउंट. ठीक है, तो वैसा वो पैटर्न था. तो उसमें से 18 कंपनी दिखी और 18 ने 2000 करोड़ के ऊपर के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे. तो जिसमें से अभी एक तो फ्यूचर गेमिंग का आया है जो 509 करोड़ तो डीएमके को दिए, लेकिन 800 जो रिमेनिंग अमाउंट है 1368, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है किसको दिया है वो आई थिंक देखते हैं समझ में आता है कि नहीं, कल के बाद हम ट्राई करेंगे तो मिलता है कि नहीं. तो ये फर्स्ट स्टोरी तो उसी पे था और मतलब न्यूजमेट भी हमारे साथ में था. तो जो इनिशियली ये जो स्टोरीज पूरा जो इन्वेस्टिगेशन पहले किया था, तो अभी जो स्टोरीज आ रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बाद तो मोर और लेस सब उसी लाइन पे है. अगर आप देखेंगे तो मतलब किसी पे रेड हुई है, कोई पे कर रहा है, या किसी को कुछ प्रोक्यो वाला मामला है कि मतलब किसी को फायदा मिल रहा है उनको वो डोनेट कर रहे हैं, तो वो उसी तरीके से. लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो जब तक हम डोनर्स को नहीं पता चलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डीएमके ने बोला था, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जनता दल सेक्युलर जो कि देवेगौड़ा की पार्टी है कर्नाटक से, एनसीपी ने 2019 का अपना थोड़ा डेटा दिया है. ये गिन चुन के 5-6 ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने अपने डोनर्स के बारे में बताया, लेकिन जो रिमेनिंग है जैसे बीजेपी है, टीएमसी है, टीडीपी है, कांग्रेस है, ये सब जो पार्टीज हैं इन लोगों ने बिल्कुल डोनर्स के बारे में डिटेल्स शेयर नहीं करी. अब देखते हैं, जैसे कोर्ट ने बोला है कि अल्फा न्यूमरिक और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, तो उसके जरिए देखते हैं हम लोग जर्नलिस्ट जितने भी हैं सब कोशिश तो करेंगे, अगर वो हम कर सकें तो इसमें और चीजें निकल के आएंगी साथ.
Correct. और जब से ये डेटा आया है, there's also been, of course, stories have been great, but lot of people are speaking about, मतलब bonds were legal, you know, so इसमें problem क्या है, getting money, why is it a problem? So I want to understand from you guys, you know, what you would like to tell our viewers, why this is a big deal, and what do you think is the problem with the electoral bonds? And I mean, of course, it's, I believe, quid pro quo, or, you know, how you get contracts after a certain amount is given. Since you all have done elaborate stories, Basant, aapko kya lagta hai, aap kaise batana chahenge?
साल 2017 में जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, तो उनका कहना था कि पारदर्शिता के लिए हम ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन इसमें डेटा किसके पास होता है? एसबीआई के पास। एसबीआई को पता होता है कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है, और उसको भी पता होगा पैसे कहाँ जा रहे हैं। एसबीआई किसके अंडर में काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये अनुमान लगाया जाता है, और इसीलिए आप देखेंगे तो जो पैसे आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, मैक्सिमम बीजेपी को गया है, दूसरे नंबर पे अब शायद कांग्रेस आ गई है जब दूसरा लिस्ट आया, पहले टीएमसी थी, तो मैक्सिमम पैसा गया है बीजेपी को। तो सरकार में भी वो है, कल को कोई और सरकार में होगा तो उसका प्रभाव रहेगा। और जनता को कोई आरटीआई के अंदर में नहीं था कि हम पता कर सकें कौन सी पार्टी किसको दे रही है, तो कोई भी कैसे पता करेगा कौन सा। और इसमें चंदा क्यों दिया जाता? अपने फायदे के लिए। प्रतीक सर की स्टोरी है कि उधर चंदा दिया जा रहा है, इधर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो ये जनता को पता होना चाहिए कि कौन से कंपनी सरकार को या पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रही है। तो पारदर्शिता के नाम पे जो कानून लाया गया था, वो सारी सूचनाएं छुपा रहा था। शायद इसीलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सूचनाएं तो जनता को नहीं मालूम चल रही, वोटर को नहीं पता कि कौन पैसे दे रहा है और उसको क्या मिल रहा है। वोटर को कुछ मिले ना मिले, जिस जो पैसा दे रहा है उसको क्या मिल रहा है। तो यही मुझे एक इंडिविजुअल होने के नाते ही गड़बड़ी लगी थी।
और आई थिंक ये भी जो मतलब इसे अनोनिमस कहा जाता है, बट एक्चुअली काफी कंपनीज ने बताया है पार्टीज को कि हमने दिया है, जैसे वो लिस्ट आई है, तो पार्टीज को मोस्टली पता था कि कौन दे रहा है पैसा। तो सिर्फ पब्लिक के लिए वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अनोनिमस सिर्फ हमारे लिए था और किसी के लिए नहीं था। प्रतीक, आपको क्या लगता है?
जैसे वो ट्रांसपेरेंसी की बात है इसमें, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब से आए हैं, तो देखिए सिर्फ इसमें एसबीआई को पता, जो रूलिंग जो भी गवर्नमेंट होती है, इससे गवर्नमेंट को पता ही कौन किसको पैसा देता है। इसका जो मतलब इसका ये जिसको इस तरीके से इसका जो फॉर्मेट है, इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था, इसका जो कानून बनाया था, गवर्नमेंट को पता है। गवर्नमेंट में जो भी पार्टी होगी, भले ही अभी आज बीजेपी है, आगे जाके कोई और हो या उसके आगे बीजेपी, जो भी पार्टी हो एक्सवाइजेड, उनको वो चीज का अवेयर रहेंगे कि भाई वहां पे कौन किसको दे रहा है पैसा, ठीक है। और लेकिन जो आम जनता है या दूसरे जो अपोजिशन पार्टीज होंगी या हैं, उनको इस बारे में कुछ भी भनक नहीं लगेगी कि भैया किसको कितना पैसा मिला है। दूसरी बात यह है कि इस तरीके का पैसा, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि अपनी कंट्री इतनी रिच है, मतलब बहुत अफरात में पैसा है यार, मतलब 1300 करोड़ आप ऐसे डोनेशन दे रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब किसी ने सोचा था कि इस कदर पैसा जाता है मतलब हमारे इधर। और जब आप इलेक्ट्रोल जो शब्द आ जाता है, तो उस प्रोसेस की बात आ जाती है, इलेक्ट्रोल प्रोसेस होता है, उसमें जनता का उनकी भागीदारी होती है, उनका हक होता है उसमें। अगर आप उन्हीं को डिवाइड कर दोगे इससे कि दे आई मीन दे आर नॉट सपोज टू नो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डोनेशन ऑफ द मनी, वेयर इट इज राउटिंग, वेयर इट इज गोइंग, तो वो तो एक बहुत अलग चीज हो जाएगी। आप लोकतंत्र में हो और लोकतंत्र में आप जनता को ही छुपा के रखना चाहते हो, तो वहां तो गड़बड़ शुरू होती है। और वही हमको देखने मिल रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं फायदे हो रहे हैं लोगों के या रेट्स डोनेशन है, तो ये बहुत अजीब पैटर्न निकल के आया है सामने।
और ये भी मतलब कोई कंपनीज मोर देन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, वो उससे ज्यादा डोनेट कर रही है, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और इसमें कोई एक्शन आपको लगता है हो सकता है? कोई मतलब इसे कोर्ट में आगे परस्यू कर सकता है कंपनीज को, मतलब पूछने के लिए कि कहाँ से अगर प्रॉफिट इतना है,
मतलब तो अगर कंपनी जैसे जाते भी है, तो देखिए किसी को चंदा देना कोई गलत नहीं है, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी मर्जी की बिल्कुल दीजिए, आपको कोई कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वो जो पैटर्न जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड में आया है, जो प्रोसेस हुआ है, वो एक बहुत देखने मतलब हैरान करने वाली चीज है।
Definitely.
मतलब अचानक से डोनेशन है और आपको कॉन्ट्रैक्ट ही मिलते जा रहे हैं। अब हम स्टोरी कर रहे हैं, अब उसमें ऐसी कंपनीज हैं कि अचानक से 6 साल तक तो जीरो आपका रेवेन्यू है, अचानक से आपका उसके बाद आपका रेवेन्यू सीधा बढ़ जाता है 200 करोड़, और उसके अगले साल आपका बन जाता है 2400 करोड़,
और डोनेशन वो पार्टियों को दे रही है।
और ऐसी कंपनीज भी हैं कि वो सिर्फ पैसा, जैसे कोई कंपनी है जहाँ पैसा आया, ठीक है, पैसा आता आपके पास और सीधा पैसा जो है बिल्कुल जीरो रेवेन्यू है, उस साल आपके पास पैसा आया और सारा का सारा पैसा चले गया कहाँ?
डोनेशन में,
इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स खरीदने में, मतलब 30-40 करोड़ जो भी आए वो उसमें चले गया। तो ये क्या है, मतलब ये नॉर्मल प्रोसीजर तो नहीं है भाई, तो कुछ तो
गड़बड़ है ना। और आप देखिए कि जो बिजनेसमैन है उसमें भी काफी डर है, पहले के तुलना में। पहले बहुत सारे बिजनेसमैन बोलते भी थे, अब नहीं बोल रहे हैं, डर है उनमें कि सरकार, वो किसी को भी डोनेट करेंगे सरकार को पता तो होगा ही, तो ये मेन दिक्कत है कि सरकार को सब पता होगा जिसके पास
और को भी डोनेट
ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, तमाम।
ये कितना इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, मतलब हाउ मच परसेंट ऑफ द मनी इज फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पॉलिटिकल फंडिंग के? और भी दूसरे बहुत रास्ते हैं जिससे पॉलिटिकल फंडिंग होती है,
जैसे प्रतीक सर की जो स्टोरी थी पहली, वो इलेक्टोरल बॉन्ड की नहीं थी, वो ट्रस्ट के जरिए फंड, ट्रस्ट के जरिए होता है कई सारे। इसमें आप सुनील मित्तल को इधर देख रहे होंगे, जो बॉन्ड आया उसमें भी उन्होंने काफ़ी खरीदा है, लेकिन जब आप उधर देखेंगे जहां ट्रस्ट के जरिए दिया जाता है, वो खुद वहां बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। जिस फ्यूचर गेमिंग की बात इधर हो रही है कि 1300 करोड़ देने के लिए, उसने जो प्रतीक सर की स्टोरी थी उसमें भी उसने भर के पैसे दिए हैं। हेट्रो है ना, हेट्रो जो मेडिसिन की कंपनी है, तो वो हैदराबाद की कंपनी है, तो उसने जो ट्रस्ट के जरिए जो पैसे दिए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रस्ट में जब आप पैसे देते हैं तो एक अंडरटेकिंग साइन होता है कि मैं इतना पैसा इस ट्रस्ट को दे रहा हूँ चुनाव के लिए, चुनाव नहीं ट्रस्ट को दे रहा हूँ। वो ट्रस्ट फिर तय करता है कितना पैसा किस पार्टी को देगा, वो उसके मुताबिक होता है। इन्होंने साफ साफ लिखा कि टू बीजेपी, तो वो डायरेक्ट लिख रहे हैं। आरपीजी ग्रुप ने उधर भी काफ़ी पैसे दिए हैं, तो जो लोग इधर दिए वो उधर भी दे रहे हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डल जाता है हर साल, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हम लोग नहीं देख सकते।
करेक्ट। और मतलब काफ़ी बड़े कंपनीज के लिंक्स अभी भी नहीं आए हैं, तो आई एम श्योर देर आर अदर वेज दैट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग।
जो हम जैसे नहीं देख, जैसे जो हम नहीं देख पाते, तो इसमें एक चीज मतलब जैसे ये जैसे टॉरेंट है, ये और भी जो कंपनीज हैं, टॉरेंट है, फ्यूचर गेमिंग का मतलब जब उस पर रेड हुई थी उसके तुरंत उसने 100 करोड़ पुडन इलेक्ट्रल ट्रस्ट में दिया था, ठीक है, और उस साल कुछ 240 या 50 करोड़ रुपए उनके पास आए थे टोटल, जिसमें से 209 करोड़ रुपए बीजेपी को गए थे। अगर आप एक रफ कैलकुलेशन भी कर लो, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 करोड़ में से, मतलब आप, मैं नहीं बोला कि पूरा 100 उसने बीजेपी को दिया होगा, रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, गिरी से गिरी हालत में 63 करोड़ तो बीजेपी को गए होंगे, हो सकता है बाकी रिमेनिंग अमाउंट भी गया हो, लेकिन 63 तो बिल्कुल शॉर्ट ही के साथ है, वरना 209 का फिगर पहुंचेगा ही नहीं आपका। तो मतलब ऐसे ऐसा है कि इनका रेशियो जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बीजेपी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो डोनेशन का।
और बसंत, आपने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी की थी, जो ये जब डेटा आया था तो बहुत लोग ट्विटर पे चर्चा कर रहे थे कि एक पाकिस्तानी कंपनी है, एक पाकिस्तानी कंपनी ने कैसे डोनेशन दिया है, तो आप ग्राउंड पे गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो आप बताइए ये पाकिस्तानी सो कॉल्ड कंपनी के बारे में। और
जब ये डेटा आया तो शाम से ही शुरू हुआ कि एक पाकिस्तान की कंपनी ने चंदा दिए हैं, और लोगों ने कॉन्स्पिरेसी बतानी शुरू की कि पुलवामा अटैक के कुछ महीने बाद ही ये पैसे दिए गए हैं और बीजेपी पर अटैक करने लगे। तो फिर थोड़ी देर बाद ये जानकारी है कि कंपनी दिल्ली के गीता कॉलोनी में रजिस्टर्ड है, इसी नाम की कंपनी, सेम नाम का था, और जीएसटी दिल्ली के वेबसाइट से डिटेल निकाला गया, तो जो जीएसटी के डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस लिखा हुआ था वो गीता कॉलोनी का था। तो हम गए वहाँ पे ढूंढते ढूंढते फिर पता चला जो जीएसटी का डॉक्यूमेंट था उस पर लिखा था रवि मेहरा उसके ऑनर का नाम, और जो वो घर था वो है रवि अरोड़ा का, लोकेशन सेम वही है लेकिन वो घर है रवि अरोड़ा का। फिर हमने थोड़ा घर आसपास पता किया तो पता चला कि वो सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी वाइफ LIC में है, और फिर हमने उनको फ़ोन किया सारे डिटेल वोटेल लेने के बाद कि सर आपके ना लोकेशन पे एक कंपनी रजिस्टर्ड है और वो डोनेशन दी है, ज़्यादा डोनेशन नहीं था, 95 लगभग 1 करोड़ के करीब में था। तो उन्होंने कहा कि आप गीता कॉलोनी में हैं, सेम एड्रेस ओल्ड गीता कॉलोनी में है, आप वहाँ जाइए, मेरे पास भी पहले काफ़ी संख्या में मतलब बैंक वाले या पुलिस वाले आते थे, मैं वहाँ भेज देता था। इत्तेफाक से उनके घर से 100 मीटर दूर पे वो लोकेशन है जहाँ पे वो रहते थे। फिर हम वहाँ गए, वहाँ पता किया जिस मकान मालिक का घर था वो किराए का घर है, मतलब वो उसमें किराएदार रहते हैं, मकान मालिक वहाँ दूध का कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस नाम का कोई बंदा हमारे यहाँ नहीं रहा है, कभी नहीं रहा, 10 साल से तो मैं 10 साल से उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई, 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं, कोई नहीं रहा। फिर मेरे दिमाग ने बोला कि एक बार GST में, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, जो GST ने से डॉक्यूमेंट आ रहा था उस पर लिखा हुआ था कि इस कंपनी के इस GST नंबर को रद्द कर दिया गया है, और इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है GST के लिए। और जब हमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट, GST वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जिस काम के लिए, जिस बिजनेस के लिए ये GST नंबर लिया गया है वो हो रहा है कि नहीं, तो हमने जब पता किया तो ये वो काम नहीं कर रहे थे, तो हमने इनका रद्द कर दिया। तो उन्होंने बोला कि ये सेल कंपनी थी और ये पैसे ट्रांसफर घुमा रही थी, बस इनका कोई बिजनेस नहीं था, ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे, तो हमने रद्द कर दिया। तो फिर मैं वो तस्वीर लेके दोनों घरों के पास गया कि इस तस्वीर को आप देखें क्या, फिर वहाँ पता चला ऐसा कोई बंदा ही नहीं है। तो एंड ऑफ द डे हम भी उस नतीजे पे नहीं पहुँचे हैं कि कंपनी पाकिस्तान की है, जब तक SBI ये क्लियर ना कर दे कि कंपनी किसकी है या जिसको डोनेशन गया वो बोल दे, और जो कंपनी जिसका एड्रेस हम ढूंढ के और नाम सेम है वो कंपनी फ्रॉड है, वो पैसे घुमाने के लिए बनी थी। तो ये हमारे हाथ में दो कहानियां हैं, इसका सही पक्ष कौन सा ये SBI ही बता सकते, अगर SBI डेटा शेयर कर दे, क्योंकि बॉन्ड खरीदते हुए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, कौन खरीद रहा है कैसे खरीद रहा है, तो SBI क्लियर करेगा, या अगर अब डेटा आता है जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जिस नंबर से खरीदा गया और जिसने लिया, तो शायद उससे थोड़ा पता चले कि वो पैसे किसको दे रहे थे।
ओके, और प्रतीक ने और एक स्टोरी की है अबाउट टॉरेंट ग्रुप दैट बॉट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वर्थ ₹185 crore एंड हैज़ लिंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर। प्रतीक, टेल अस अबाउट दिस ग्रुप एंड हाउ यू वेंट अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग दिस।
सो जो ये टॉरेंट ग्रुप था ना, तो ये इसका नाम मैं जब हम लोग पहले वाला जो सीरीज कर रहे थे मैंने बहुत बार इसका नाम देखा था, लेकिन कभी मैंने देखा कि इस पे रेट वेट कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन डोनेशन के लिस्ट में इसका नाम हरदम रहता था, मतलब जो भी बहुत सारे ईयर्स में दिखा मेरे को उसका। तो जब ये हमारे पास जब पूरा इलेक्ट्रॉन का डेटा रिलीज हुआ, तो फिर टॉरेंट को जब मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे इन्होंने ऐसे दिए हुए हैं, आई मीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स खरीदे इन्होंने। तो फिर पता करने लग गए टॉरेंट ग्रुप किसका है क्या है, तो धीरे धीरे पता चला कि इस ग्रुप के जो ये जो ग्रुप था, तो भिवंडी करके बॉम्बे के पास एक जगह है, तो वहां पे ₹285 crore का प्रॉपर्टी टैक्स इसको 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ के CM थे, तो उन्होंने उसको माफ कर दिया था ये प्रॉपर्टी टैक्स, और इस कंपनी को लेके पर्टिकुलरली टॉरेंट पावर को लेके वहाँ के लोकल लोगों ने भी आंदोलन किया था, काफी कंप्लेंट्स थी, बहुत ज्यादा उसका जो बिल आते थे बहुत ज्यादा आते थे, बहुत दादागिरी करते थे, मतलब उनके जो वर्कर्स वगैरह थे उस तरीके का माहौल था। तो वो माफ कर दिया उनका ₹285 crore का, और बोला ये था कि अगर आप नहीं माफ करोगे तो ये जो लोग हैं इनके बिल बढ़ते जाएंगे, उनका टैरिफ बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से माफ कर दिया। थोड़ा सा और पता करने गए तो पता चला कि ये जो सुधीर मेहता हैं, सुधीर मेहता अदानी ये जो है और नरेंद्र मोदी, इनके बहुत पुराने संबंध हैं। CII ने जब गुजरात राइट्स हुए थे उसके बाद CII बजाज, जिसमें राहुल बजाज और ये लोग सब लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा जो गुजरात गवर्नमेंट थी उसका विरोध किया था, बहुत क्रिटिसाइज किया था उनको, बहुत जम के मतलब उन लोग बहुत मतलब नाराजगी जताई थी अपनी। तो उस वक्त सुधीर मेहता, गौतम अदानी, इन लोगों ने एक अलग से ग्रुप का, उसका नाम है आई थिंक रिसर्जेंट गुजरात करके ऐसा, आई थिंक ये शायद उस ग्रुप का नाम था, और ये मोदी के सपोर्ट में आए थे उस नरेंद्र मोदी है उनके सपोर्ट में आए थे CII के अगेंस्ट, और उन्होंने काफी विरोध किया, झगड़ा हुआ, फाइनली CII को माफी मांगनी पड़ी थी उनसे, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनसे माफी मांगनी पड़ी थी। तो तब से टॉरेंट और ये इनके साथ चलते हुए आगे, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जैसे 2014 के बाद तो एक रूल आया था, रूल तो पहले आया हुआ था, लेकिन सबसे पहले उसका फायदा मिला था टॉरेंट को, ड्रग्स से रिलेटेड मतलब दवाइयों से रिलेटेड रूल आया था। प्राइम मिनिस्टर के जो फॉरेन डेलीगेशन होते हैं या बाहर से अगर कोई बिजनेसमैन फॉरेन कंट्रीज के जो डेलीगेशन अगर वो अटेंड कर रहे होते हैं तो उसमें सुधीर मेहता हरदम रहते हैं, सुधीर मेहता और अडानी हरदम रहते थे। तो ये एक पूरा वो था, और जब CM थे तब भी ये लोग उनके साथ मतलब विदेश के दौरों पे या बिजनेस डेलीगेशन बोल के इसमें जाते थे।
ये सब जो हम स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं, आई रियली डोंट थिंक ये टेलीविजन मीडिया में, प्रिंट ऑफ कोर्स आई थिंक काफ़ी स्टोरीज कर रहे हैं, बट टेलीविजन मीडिया में ये सब स्टोरीज काफ़ी गायब रहे हैं। वी हैव डन अ स्टोरी, आर कोलीग इशिता हैज़ डन अ स्टोरी अबाउट व्हाट द मीडिया वाज डूइंग इंस्टेड ऑफ दिस, बट इट रियली फॉल्स ऑन इंडिपेंडेंट न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस टू डू थरो इन्वेस्टिगेशन, विच इज़ वाई इफ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर ऑलरेडी डू सब्सक्राइब टू न्यूज़ लॉन्ड्री। वी ऑल्सो हैव इलेक्शंस कमिंग अप वेयर वील नीड योर सपोर्ट to continue to bring you such stories. But I also want to ask, like, when this data come out, I know everyone was also ready for the data, ye aane wala hai ye time pe, uske baad hum bas lag jayenge, to kaise aap log ne kiya, matlab mera bhi experience hai, but aap log bataiye, how did you go through the data, because there were two data sets aur kafi extensive data sets hai.
Ek cheez main jod ke aage batata hu, aapne kaha ki TV media kaise report kar raha hai, मैं मीडिया उन दिनों देख तो नहीं पाया, लेकिन कुछ कुछ क्लिप्स देखे कि जो टीवी मीडिया वो बता रहा है कि विपक्ष कहता था कि ये दो तीन बड़े बिजनेसमैन का नाम लेके, इनका तो नाम कहीं नहीं दिख रहा। अरे कम से कम कोशिश तो कर लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री की जो अगली रिपोर्ट, जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा स्टोरी आ चुकी होगी, उसमें हम बताएंगे कि जिन बिजनेसमैन का वो नाम ले रहे थे कि इनका नाम कहीं नहीं दिख रहा, वो किस तरीके से पैसा घुमा के दे रहे हैं। वो बड़े बिजनेसमैन है, वो इतना कम अक्ल नहीं लगाते हैं कि डायरेक्ट अपने नाम से पैसे दे देंगे और आप ढूंढ लेंगे कि फलाने ने इतने पैसे दिए, फलाने ने इतने पैसे दिए। तो थोड़ा कोशिश करते, थोड़ा समय देते तो शायद उनको डेटा मिल जाता जो हमें मिला। दूसरी बात, उस दिन डेटा तो एक दिन बाद आने वाला था, जिस दिन आया फ्राइडे को आने वाला था,
हाँ, और
शाम को ही आ गया 8 बजे करीब में। तो हम सब की प्लानिंग थी कहीं और जाने की, मतलब एक हमारे दोस्त की मदर की तबीयत ख़राब है वहाँ, और उस वक्त आ गया तो हम लोग उधर नहीं गए। पूरी रात जग के मैं बस, क्योंकि मेरे हिस्से में था रेड वाली स्टोरी की, जितने रेड पड़े हैं उसका डेटा निकालना। मुझे कुछ हिस्सा दिया गया 2021 से लेके या 22 से लेके। फिर हमने रात को 3 बजे तक डेटा जितना मिल रहा था इधर से उठा रहे थे, कितने पैसे इधर कब रेड हुआ, कितने पैसे कब रेड हुआ, ये हम लोग निकालते रहे। तो पूरी रात, फिर सुबह सुबह 10 बजे दफ्तर आए, फिर वहाँ पाकिस्तानी कंपनी को ढूंढने चले गए। तो काफ़ी हैक्टिक था हमने, और इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है ना, बिजनेस रिपोर्टिंग थोड़ी कठिन हो जाती है। आप डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं जो पल्ले नहीं पड़ती मेरे, तो वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था।
और आई थिंक ट्विटर पे भी काफी लोग एक्सेल शीट शेयर कर रहे थे, क्योंकि फिर वो कन्वर्ट करना काफी टाइम कंज्यूमिंग था। और मीडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने भी एक स्टोरी की थी अबाउट मीडिया कंपनीज दैट हैव डोनेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बिकॉज आई थिंक ये भी जब हम बात करते हैं कि मीडिया कैसे कवर कर रही है, क्यों नहीं कवर कर रही है, ये भी काफ़ी रोल प्ले करता है। तो कंपनीज रिलेटेड टू TV9, ओपन मैगजीन, सन TV, इवन इंडिया टुडे ग्रुप हैव डोनेटेड मोर देन 1,000 crores इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो अगेन यू कैन सी दैट स्टोरी एज वेल ऑन न्यूज लॉन्ड्रीज।
सबसे ज्यादा किसका था?
सबसे ज्यादा TV9 का था, बिकॉज थ्रू मेघा इंजीनियरिंग।
अच्छा,
काफी करेक्ट,
मतलब काफी लोयल प्रेमी है, हर तरफ से केयर करते हैं स्क्रीन पर भी और इधर भी।
और मुझे आप लोग से ये भी पूछना है कि अभी इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो गई है, इलेक्शंस आर गोइंग टू स्टार्ट इन लेस देन अ मंथ, हाउ मच डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू प्ले अ रोल? पीपल आर कॉलिंग दिस द बिगेस्ट स्कैम इन ओवर अ डेकेड, बट हाउ मच इज इट गोइंग टू मैटर ड्यूरिंग इलेक्शंस? हाउ मच इज इट गोइंग टू मैटर विद द वे दैट पीपल वोट?
देखिए, मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। हम कितना भी आलोचना कर लें, हम लोग तमाम रिपोर्ट्स कर रहे हैं, पर हम उस हद तक नहीं पहुंच सकते जहां अखबार पहुंचते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार दैनिक जागरण, जिस दिन शाम को ये खबर आई, अगले दिन एक कोने में छोटी सी खबर थी। टीवी मीडिया में एक आध चैनल को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम ने इसको बिल्कुल आउट कर दिया। इसके दो वजह हैं, एक तो उनके कुछ अपने एडवर्टाइजमेंट का मसला है, दूसरा यह कि उतना दिमाग शायद नहीं लगाना चाहते, उतनी मेहनत नहीं करना चाहते। चार लोगों को बैठा के तू मैं करवा के अगर TRP आ जा रही है तो क्या फ़र्क पड़ता। तो बेसिकली जनता को कन्वे नहीं हो पाया, जैसे कोल स्कैम कहा जाता है या अन आंदोलन था। लोकपाल का क्या हुआ? ऐसा लग रहा था, तब हम लोग नौजवान थे, कॉलेज में थे, ऐसा लगता था लोकपाल आएगा, देश की राजनीति तो एकदम सर्फ एक्सेल जैसे कपड़ा साफ करता वैसे साफ हो जाएगी। लोकपाल आज स्थिर बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा। आप उसके वेबसाइट पर जाएंगे तो आ जाता है इतने केस आए, इतने नाम नहीं बताएंगे, RTI फाइल करो तो नाम नहीं बताएंगे किसके खिलाफ शिकायतें आई है। तो मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर टेलीविज़न मीडिया, वो नहीं किया तो ये जाएगा ही नहीं जनता के बीच में। ये अगर ही जनता के बीच जाता, जनता को पता चलता कि इसके क्या। अब देखिए, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज है, भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज है, उसको पैसे भी बेहद कम मिले हैं, चुनाव बेहद करीब है, वो पार्टी अपने कैंडिडेट को पैसे कहाँ से देगी, प्रचार कहाँ से होगा, उसके लीडर प्रचार करने कैसे जाएंगे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो डेमोक्रेसी को नुकसान करेगा। जहाँ विपक्षी पार्टियाँ ख़त्म होती हैं, डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो जनता को ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी बचाना ज़रूरी है, और ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड था डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने में उसकी छोटी सी भूमिका तो होगी
डेफिनेटली। और नंबर्स के अलावा, जैसे वो क्विड प्रो कोस, एजेंसी रेड्स, कॉन्ट्रैक्ट मिलना, जैसे हमारे काफ़ी स्टोरीज ने एलैबोरेट किया है, जब तक वो आई थिंक जनता के दिमाग में नहीं जाए तो आई डोंट थिंक वोटिंग में असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है प्रतीक?
हाँ बिल्कुल, ये बात जो बसंत ने बात बोली बिल्कुल, इससे मैं बात करता हूँ, क्योंकि क्या है कि TV का मानो ना मानो उसका रीच बहुत ज़्यादा है। और जैसे हिंदी, जो हिंदी अखबार हैं, ठीक है, अभी ये JP का सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब जहाँ पे भी आप हिंदी बेल्ट आप देख लो तो सदर्न स्टेट्स में ये बात ज़रूर, ये मतलब वहाँ के न्यूज़पेपर्स ने इसको किया है, इसके बारे में लेके मुद्दे उठे भी हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ का देखोगे या बाकी महाराष्ट्र या ये, तो यहाँ पे भी है, लेकिन इतना ज़्यादा अगर TV जैसे टेलीविजन न्यूज चैनल्स, अगर जैसे हम लोग रिपोर्ट करते आ रहे हैं, अगर ये रिपोर्ट कर रहे होते जिस दिन से ये निकला है, तो अभी तक बहुत बड़ा फर्क होता। अभी तक मतलब हम शायद इसी मुद्दे को ही सुन रहे होते, और अभी तक हर व्यक्ति को मतलब बहुत मैक्सिमम लोग को पता होता कि भाई कि ये क्या है मसला, ये इलेक्ट्रो बॉन्ड का क्या है, झोल है या नहीं है, जो भी है उसके बारे में पता चलता। अभी कैसा है कि इतना रीच नहीं है, जब तक आप नीचे लेवल पे कोई भी चीज को लेकर नहीं पहुंचते हो, और चुनाव में इसलिए मुझे लगता नहीं कि इसका इतना असर पड़ेगा।
ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट सेगमेंट व्हिच इज द सजेशन, सो बसंत आप क्या रेकमेंड करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को?
मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो न्यूज़ लॉन्ड्री, न्यूज़ मिनट, स्क्रॉल से आयुष हैं, बाकी तमाम लोग हैं, जब से ये डेटा आया हुआ हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, अन्य भाषाओं में जा रही है, आप इसको पढ़ें, इसको शेयर करें। इसमें बहुत सारे सिर्फ आप लिंक ना शेयर करके अंदर जो हम ग्राफिक्स बनवा रहे हैं, जो डेटा हम दे रहे हैं, उसको भी शेयर करें, ताकि लोगों तक कम से कम इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि हमें इसको करने में बहुत मेहनत लगता है, रात रात भर लोग बैठे हुए हैं, एक डेटा अगर 1 करोड़ भी मिस्टेक हुआ तो नुकसान हो जाता है, या आप एक्सेल शीट पर ले रहे हैं गलती से कुछ भी नंबर, एक नंबर इधर उधर हुआ तो करोड़ अरब में पहुंच जाएगा, अरब करोड़ लाख में पहुंच जाएगा। तो हम काफ़ी मेहनत करें, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें और शेयर भी करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारी मेहनत भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसको आप newslaundry.com पे, scroll.com पे, newsminute.com पे, तमाम जगहों पे पढ़ सकते हैं और शेयर भी कीजिएगा।
प्रतीक आप क्या रेकमेंड करना चाहोगे?
नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, मामला लीगल है, और उसमें रवि किशन है आई थिंक मेन रोल में, उसमें वो काफी बहुत ही मस्त सीरीज है, मतलब हिंदी में बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत समय बाद कोई अच्छी सीरीज देखने आई है, और उसमें जितने भी एक्टर्स हैं, मतलब रवि किशन के अलावा जितने भी हैं, तो वो सभी ने इतनी प्यारी एक्टिंग करी है, बहुत ही मजेदार है वो सीरीज।
और उसका रिकमेंडेशन, उसका डायलॉग कितना प्यारा है,
सारे डायलॉग्स
एक से एक डायलॉग्स आ रहे हैं।
उसमें वो बंदी है ना, वो क्या नाम है यार, वो दीदी
सुजाता,
सुजाता दीदी, वो थिएटर की एक्ट्रेस है, वो श्रीराम जो है ना, अपन देखा था,
हाँ,
वो थिएटर, अच्छा, वहाँ पे काफी प्लेस करती थी ऊपर।
अच्छा,
आई वुड लाइक टू रेकमेंड बसंत एंड आयुष सीरीज फ्रॉम 2022, प्लंडर ऑफ द अरावलीज, विच हैज जस्ट वन द रामनाथ गोविंका। इट्स आई थिंक 4 रिपोर्ट्स, एंड आई ऑल्सो रिमेंबर आई जस्ट मूव टू दिल्ली एंड दे वर डूइंग दिस रिपोर्ट वेरी रिलीजियसली विद सम सॉर्ट ऑफ लॉट ऑफ पुश बाय आर एडिटर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टोरीज लाइक दिस डू गेट रिकग्नाइज, एंड दिस वॉज ऑल्सो पावर्ड बाय आर सब्सक्राइबर्स बिकॉज इट्स एन NL सेना project. So do read all the stories in the series if you haven't already, and continue to support us. Elections are just around the corner. We need your support more than ever so we can continue to bring you stories that matter. And with that, this podcast is adjourned.
News Laundry is possible because of our paying subscribers. We don't run on corporate or government ads. You too can be part of changing the news model. Go to newslaundry.com/subscription. Be a part of the community that pays to keep news independent. For the smoothest News Laundry experience, download our app, watch our shows, listen to our podcasts, read our reports, stay informed, pay for news, protect democracy, save the world.